हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आज हमारे बीच में विशेष वक्ता उपस्थित हैं हिज ग्रेस बलदेव प्रभु। हरि हरि बोल। बलदेव प्रभु अभी इस्कॉन चौपाटी में सेवा कर रहे हैं। सन 1994 में ये इस्कॉन के संपर्क में आए और 1999 में इन्होंने फुल टाइम ज्वाइन किया। इनके माता पिता भी हिज होलीनेस राधा स्वामी महाराज से दीक्षित हैं और प्रभु जी की मुख्य सेवा रही यूथ प्रीचिंग और जो महाराज की यात्राएं जाते हैं उसके लिए कोऑर्डिनेट करना और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने यूथ को कल्टिवेट किया और पिछले 10 साल से ये संकीर्तन लीडर हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि मैराथन के मंथ में महीने में बलदेव प्रभु जी का हमें संग मिल रहा है और इसके साथ साथ भारत में भी अच्छा प्रचार करते हैं प्रभु जी और विदेशों में भी, जैसे कि वेस्ट इंडीज़ में जाना, साउथ अमेरिका, मिडल ईस्ट में प्रभु जी जाते हैं और वहाँ भी लोगों को लाभान्वित करते हैं। और मेरा परम सौभाग्य रहा कि मैं प्रभु जी के संग में था पिछले साल TPC कॉलेज में और पर्सनली रूप से मैं जानता हूँ प्रभु जी बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही विनम्र और बहुत ही विनोदी स्वभाव के हैं और हमेशा उत्साहित रहते हैं पुस्तक वितरण के लिए और प्रचार के लिए। तो हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में बलदेव प्रभु हैं। साथ ही में हम स्वागत करेंगे हिज ग्रेस षडभुज प्रभु जी का भी, तो दोनों भक्तों का जो कि हमारे इस केंद्र में पहली बार आए हैं और इसके मुखारविंद से पहली बार हम भगवत संदेश सुनेंगे।
हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। मैं तो यहाँ सीखने आया था लेकिन मुझे ऊपर ही बिठा दिया आप लोगों ने। हमने दिल्ली के मंदिरों के बारे में बहुत सुना था। पिछले 4 साल से गौरांग प्रभु जानते होंगे, गौरांग प्रभु को मुझे बोल रहे थे अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो जो लीडर उनसे सीखना चाहिए। तो मुझे बोल रहे थे कि आप जाइए कभी, आप और षडभुज प्रभु, षडभुज हमारे मंदिर के संकीर्तन लीडर हैं। और लेकिन क्या मैराथन के वक्त जाना डिफ़िकल्ट था हमारे लिए। मैराथन में वहाँ पर भी काफ़ी पुस्तक वितरण होता है तो उसके बीच में यहाँ एक्शन देखने के लिए आना बहुत कठिन था। 3 साल से हम प्लान कर रहे थे तो भगवान ने ऐसे अरेंज कर दिया कि ये बार हम आ पाए, क्योंकि ये बार राधा रास बिहारी इस्कॉन जू में कुछ फेस्टिवल होने वाला है, 40th एनिवर्सरी हो रहा है जनवरी 14 को। तो उसके कारण मुंबई के टेंपल सब मिलके उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा संकीर्तन जो मैराथन होगा वो जल्दी ख़त्म होगा, जल्दी चालू होगा। तो 15th दिसंबर हमारा मैराथन एंड हो गया। तो ये बार समय मिल गया तो मैं भाग के आ गया यहाँ पर सीखने के लिए। आप कल ईस्ट ऑफ कैलाश राधा पार्सर्टी में गए थे, हम कल फिर से जा रहे हैं और आज आप लोग के बीच में सीखने आए हैं। तो अजीब लग रहा है यहाँ बैठ के प्रवचन देने के लिए, लेकिन प्रभु जी ने बोला कि बिल भरना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत आप टॉलरेट कीजिए मुझे। आज हम श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 6ठे अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। श्लोक है 41-46। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पहले मैं 41-42 तक ऐसे ट्रांसलेशन पढ़ के फिर ये श्लोक पे आता हूँ। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। सौभरी मुनि ने सोचा, मैं वृद्धावस्था के कारण अब निर्बल हो गया, मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मेरी चमड़ी झूल रही है और मेरा सिर सदा हिलता रहता है। इसके अतिरिक्त मैं योगी हूँ, अतएव ये स्त्रियाँ मुझे पसंद नहीं करती। चूँकि राजा ने मुझे तिरस्कृत कर दिया है, अतएव मैं अपने शरीर को ऐसा बनाऊँगा कि मैं संसारी राजाओं की कन्याओं का ही नहीं अपितु सुर सुंदरियों के लिए भी अभिष्ट बन जाऊंगा। 43। तत्पश्चात जब शौबरी मुनि तरुण और रूपवान हो गए तब राज प्रसाद का दूत उन्हें राजकुमारियों के अंतपुर में ले गया जो अत्यंत ऐश्वर्यमय था। तत्पश्चात उन 50 राजकुमारियों ने उसी एक पुरुष को अपना पति बना लिया। 44। तत्पश्चात राजकुमारियाँ शौबरी मुनि द्वारा आकृष्ट होकर बहिन का अपना नाता भूला बैठे और परस्पर यह कहकर झगड़ने लगी, ये व्यक्ति मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं। इस तरह से उन सबों में काफी विरोध उत्पन्न हो गया। सह बहुरच ताभी अपारणीय तप श्रिया अनर्घ्य परिच्छदेशु गृहेषु नाना उपवन अमल अंब सरसु सौगंधिका काने काननेशु महारह शय्या आसन वस्त्र भूषण स्नान अनुलेप अव्यवहार माल्यकै सुलंकृत स्त्री पुरुषेषु नित्यदा रेमे अनुगायत द्विज भृंग वंदिषु स्वबहुवर्चस्ताभिरपारण्य तपश्रीयानर्घ्यपरिच्छदेषु गृहेषु नानोपवनमालम्भ सरसु सौगन्धिककाननेषु महार्षय्याशनवस्त्रभूषण स्नानानुलेपाव्यवहारमाल्यकै स्वलंकृत स्त्रीपुरुषेषु नित्यदा रेमेनुगाय द्विजभृङ्गवन्दिषु सभौरचस्ताभिरपारणीया तपश्रीयानर्घ्यपरिच्छदेषु गृहेषु नानोपवनमालम्ब सरसु सौगन्धिककाननेषु महार्षय्याशनवस्त्रभूषण स्नानानुलेपाव्यवहारमाल्यकै स्वलंकृतस्त्रीपुरुषेषु नित्यदा रेमेनुगाय द्विजभृङ्गवन्दिषु सभौरचस्ताभिरपारणीया तपश्रियानर्घ्यपरिच्छदेषु गृहेषु नानोपवनमालम्ब सरसु सौगन्धिककाननेषु महार्हशय्याशनवस्त्रभूषण स्नानानुलेपाव्यवहारमाल्यकै स्वलंकृतस्त्रीपुरुषेषु नित्यदा रेमेनुगाय द्विजभृङ्गवन्दिषु स व सौबरी ऋषि बहुरिच वैदिक मंत्रों का उपयोग करने में पटु ताभी अपनी पत्नियों के साथ अपारणीय
असीम
तपः तपस्या का फल श्रिया ऐश्वर्य से अनर्घ्य भोग की सामग्री परिच्छदेषु विभिन्न वस्त्रों से सज्जित गृहेषु घर में नाना तरह तरह के उपवन पार्क अमल स्वच्छ अम्बह जल सरसु झीलों में सौगंधिक अत्यंत सुगंधित काननेशु बगीचों में महाअरह अत्यंत कीमती शैया बिस्तर आसन बैठने के स्थान वस्त्र वस्त्र भूषण गहने स्नान स्नानागार अनुलेप चंदन अव्यवहार व्यंजन माल्यकै तथा मालाओं से सुलंकृत भली भांति सज्जित स्त्री स्त्रियां पुरुषेषु पुरुषों सहित नित्यदा निरंतर रे में भोग किया अनुगायत गायन के साथ द्विज पक्षी भृंग भौरे वंदिषु तथा बंदीजन पेशेवर गवैया अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की चाय। चूंकि सौभरी मुनि मंत्रोच्चारण करने में पूर्ण रूपेण पटु थे अतएव उनकी कठिन तपस्या से ऐश्वर्यशाली घर वस्त्र आभूषण सुसज्जित दास तथा दासियां स्वच्छ जल वाली झीले उद्यानों से युक्त विविध बगीचे उत्पन्न हो गए। उद्यानों में विविध प्रकार के सुगंधित फूल चहकते पक्षी तथा गुनगुनाते भौरे थे और पेशेवर गायकों से घिरे रहते थे। शौबरी मुनि के घर में मूल्यवान सेज आसन गहने स्नानागार और तरह तरह के चंदन लेप फूल मालाएं तथा स्वादिष्ट व्यंजन थे। इस प्रकार ऐश्वर्यशाली साज सामान से घिरे हुए सौभरी मुनि अपने अनेक पत्नियों के साथ गृह कार्यों में व्यस्त हो गए। तात्पर्य सौभरी ऋषि महान योगी थे। योग सिद्धियों से 8 प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। अणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य इषित्व वशित्व तथा कामावसायिता। शौबरी मुनि ने अपने योग सिद्धियों के बल पर अति श्रेष्ठ भौतिक ऐश्वर्य का भोग किया। चाहे श्री कृष्ण बलराम राधा रुक्मिणी रमन की चाहे। बहुरुच शब्द का अर्थ है मंत्रोच्चारण में पटु। जिस प्रकार सामान्य भौतिक साधनों से भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है उसी प्रकार मंत्रों की सूक्ष्म विधि से भी ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है। सौभरी मुनि ने मंत्रोच्चार के बल पर भौतिक ऐश्वर्य की व्यवस्था कर दी किंतु यह जीवन की सिद्धि नहीं थी। जैसा कि आगे देखने में आएगा सौभरी मुनि भौतिक ऐश्वर्य से ऊब उठे और हर वस्तु त्याग कर वे वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर फिर से जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने अंतिम सिद्धि प्राप्त की। जो लोग आत्म तत्वविद नहीं है, अर्थात जीवन का आध्यात्मिक मूल्य नहीं जानते हैं, वे भारी भौतिक ऐश्वर्य से संतुष्ट हो सकते हैं, किंतु आत्म तत्वविद संतुष्ट नहीं होते। शौबरी मुनि के जीवन तथा कार्यों से हम यही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो अब हम 9वें स्कंद पे यहाँ पर पहुँच गए भागवतम में। यहाँ पर इसके बाद 10वां स्कंद आएगा, भगवान श्री कृष्ण की विविध लीला है वहाँ पर। मुझे याद आ रहा है कि एक बार हम जब पुणे में थे, पुणे टेंपल में, तो उस समय परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी आए थे, जो अभी उनका तिरोभाव हो चुका है राजकोट के। तो वो भागवत में उनका स्पेशल रुचि है, एक्चुअली उनके सारे डिसाइपल्स भागवत में ज़्यादा रुचि रखते हैं वो। तो मुझे याद है एक उनका एक्सपायरिंग डिसाइपल उस समय था, शिक्षा यानी दीक्षा लेने वाला भक्त। तो वो महाराज जी के पास गए, महाराज उसको ब्रह्मचारी बनना था। तो महाराज से पूछा उन्होंने, गुरु महाराज जी मुझे ब्रह्मचारी बनना है, लेकिन काम वासना बहुत तकलीफ दे रही है, क्या करना चाहिए, बहुत तकलीफ हो रहा है, लस्ट इज ट्रबलिंग मी अलॉट। तो महाराज जी उसको देखे बोले, शादी कर लो। बोले महाराज जी मैं तो आपके पास सॉल्यूशन लेने आया था कि आप मुझे लस्ट के लिए सॉल्यूशन देंगे, आप तो मुझे शादी करने बोल रहे हैं, मुझे सॉल्यूशन बताइए, हाउ कैन आई ओवरकम माई लस्ट। तो महाराज जी ने बोला, वही तो बोल रहा हूँ मैं, शादी कर लो, विवाह कर लो। तो बेचारा भ्रमित हो गया कि महाराज जी इतने आज हैवी है एकदम। तो महाराज हंस के बोले, मैंने कहा विवाह कर लो, लेकिन किससे विवाह कर लो वो बताया नहीं आपको मैंने अभी तक। कहा कि श्रीमद् भागवतम से विवाह कर लो। श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है जिसके पढ़ने से, अध्ययन से, श्रवण से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब कम हो जाता है। ये श्रीमद् भागवतम अमल पुराणम। तो ये श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद के पहले 9वां स्कंद आया है। और ये 9वां स्कंद देखिए, ऐसे ऐसे इसमें अध्याय है, इसमें इतने वार्निंग दिए गए हमको स्टार्टिंग से एंड तक, स्कैंडल ही स्कैंडल है। ऐसे मीडिया एक्सपोज करता है ना अलग अलग बाबा और गुरु को, ऐसे लग रहा है आज सुखदेव गोस्वामी को अलग मूड में सबको एक्सपोज कर रहे हैं। क्यों ऐसे नाइन्थ कैंटो बिफोर टेंथ कैंटो, नाइन्थ कैंटो में इतना सब क्यों दिया गया है, बड़े बड़े ऋषि मुनिगण है कि नहीं। ऐसे महाराज का शब्द जो अर्थ है दो प्रकार से होता है, एक महाराज है जो सन्यासी है जो मुनि है, और दूसरे महाराज जो है राजा है। यहाँ दोनों महाराजों की कथा आती है, शौबरी मुनि, दुर्वासा मुनि, पूर्व की कथा आती है, ययाति महाराज, कैसे ये इतने महान व्यक्ति काम क्रोध में फंस गए। जैसे मुझे याद आ रहा है, मैं एक बार एक जगह गया था तो एक डिवोटी ने मुझे प्रश्न पूछा था, प्रभु जी मेरा भाई जो है बड़ा भाई, वो हमेशा कृष्ण भगवान के ऑपोजिट बोलते रहता है। वो पूछता है आपका कृष्ण ने क्या क्या गड़बड़ किया है, आप उसकी सेवा क्यों करते, उसकी पूजा क्यों करते हैं। तो मुझे पूछा क्या बोलना चाहिए उसे उत्तर में। तो फिर मैंने उसे कहा कि आपने भाई से आप पूछिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन कृष्ण के बारे में उनके मिला है वो कहाँ से मिला है। तो अधिकतर इन्फॉर्मेशन टीवी, सीरियल, उपन्यास इसमें से मिला होगा, है कि नहीं। आज के लोग जानते कहाँ से सब कुछ इन्फॉर्मेशन, मीडिया से जानते हैं। तो मीडिया तो कोई धर्म कार्य के लिए लगा है कुछ, है कि नहीं, सेंसेशनल चीज़ के लिए लगा है। उसे पूछिए आपने कभी सही किताबों को पढ़ा है कि नहीं। सही किताब अगर पढ़ेंगे तो कृष्ण भगवान के बारे में ऐसा कभी कोई बोलेगा ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा ना कि पुस्तक वितरण करो। क्यों? क्योंकि बाहर के देश दुनिया में आज कल लोगों को, पहले का काल में क्या था, कोई व्यक्ति ज्ञानी था या अज्ञानी था उसे कुछ भी मालूम नहीं, या तो उसे पूरा मालूम है या थोड़ा मालूम है। आज के काल में देखते कि लोगों को मालूम है, उसमें दो कैटेगरी है, सही मालूम है और गलत मालूम है। क्योंकि आज के देखते हैं हम बाहर के दुनिया में टीवी सीरियल या फिर कोई चित्रपट होता है, मूवी होता है, या कोई किताब भी लिखता है, उठ पटान चीज लिखता है भगवान के बारे में, सब उल्टा पुल्टा। एयरपोर्ट से जाएंगे तो इतने सारे बुक, सीता के ऊपर बुक है, राम जी के ऊपर बुक है। हमारे महाराष्ट्र में जहाँ से हम लोग आए, एक व्यक्ति ने कर्ण को ग्लोरीफाई कर दिया, इतना बड़ा बुक लिख दिया उसने कि पूरे महाराष्ट्र में सब लोग जब किताब वितरण करते तो बोलते हमको वो बुक चाहिए, मृत्युंजय, इसमें कर्ण को ग्लोरीफाई किया और अर्जुन को एकदम निम्न माना है। तो देखिए, जब सही किताबें नहीं होती ना तो गलत किताबें मार्केट में आ जाती है, और आज का जनरेशन वही पढ़ता है, सब कुछ मीडिया में वही देखता है। अभी हाल ही में एक महाभारत सीरियल आया था, मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो बी आर चोपड़ा की महाभारत आई थी, तो उस महाभारत से कुछ एटलीस्ट सीखा तो मैंने, कुछ पता नहीं था पांच पांडव को, नाम भी मालूम नहीं थे, लेकिन महाभारत सीरियल देखेंगे एक्चुअली पांच पांडव का नाम मालूम पड़ गया। स्टोरी लाइन तो एटलीस्ट एज इट इज थी, पर बड़े फिलोसफी ऊपर नीचे हो। आजकल की दुनिया में तो महाभारत सीरियल अभी जो आके गया उसमें स्टोरी लाइन ही चेंज कर दिया पूरा, सेंसेशनलाइज करने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप सही किताबें पढ़ेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। तो भागवत का ग्रंथ पढ़ेंगे, कृष्ण पुस्तक जो प्रभुपाद ने लिखा है वो पढ़ेंगे, कभी ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं कृष्ण के ऊपर कोई वांछा लगा सकता है। क्योंकि इसमें देखिए क्या लिखा है, 10th कैंटो चालू होने के पहले लोगों को बराबर वार्निंग दिया जा रहा है बार बार। ये श्रीमद् भागवत के पूरे 1st से 9th कैंटो इज प्रिपरेशन फॉर द 10th कैंटो, और उसमें भौतिक जो आसक्ति है, जैसे हमारे अमोक लीला वो बोले, आसक्ति यानी आ सकती है लेकिन जा सकती नहीं। भौतिक आसक्ति, उसके प्रति इतना विरोध किया गया, लस्ट के प्रति इतना स्ट्रांगली बोला गया है। और यहाँ पर देखते हैं शौबरी मुनि का इतना ज्वलंत उदाहरण है। तो ये भागवत का 9वां स्कंद पूरा रेडी कर रहा है व्यक्ति को, जो व्यक्ति जा रहा है 10वें स्कंद पे उसकी पूरी तैयारी की जाती है। भाई जानो, ये लस्ट को इतना बड़ा यहाँ पर बताया गया, बड़े बड़े विद्वान पुरुष काम वास्तव में फंस गए, तो आप किस खेत की मूली है। 10th कैंटो पे जा रहे, थोड़ा नम्रता से जाइए, सोचिए मत कि 10th कैंटो सुनने मिल रहा है, 10th कैंटो पढ़ने के बाद भी समझेगा ये बहुत सारा चीज। तो ये प्रिपरेशन इज कॉल्ड एज 9th कैंटो। यहाँ पर शौबरी मुनि का ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे वो इतने बड़े योगी थे फिर भी काम वासना में फंस गए। तो आज के इस चर्चा, इस विषय पे हम दो विषय पर चर्चा करेंगे, एक तो शौबरी मुनि के जीवन से हम कुछ सीखेंगे, और दूसरा प्रभुपाद ने तात्पर्य में सुंदर से बताया गया कि योगिक सिद्धि के बारे में बताया, तो उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो शौबरी मुनि की कथा यहाँ पर आती है कि कैसे शौबरी मुनि इतने वर्षों तक, हजारों वर्षों तक यमुना में अंदर तपस्या कर रहे थे, और जिस मछली का वो संरक्षण कर रहे थे, सुरक्षा दे रहे थे उनको, आपको पता होगा गरुड़ जी को उन्होंने श्राप दिया कि आप यहाँ नहीं आ सकते, जिनके लिए उन्होंने सुरक्षा दी वही मछली उनके पतन का कारण बन गया है कि नहीं। वो काउंसलिंग कर रहे थे मछली का, मछली उनका पतन का कारण बन गया। बड़ा एक इम्पोर्टेंट सीख है, जिसको उन्होंने बचाया वही उनको बचा नहीं पाए। तो प्रीचिंग के लिए इम्पोर्टेंट जानना कि जो प्रीचिंग करते हैं ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं कितना घुसूँ मैं अंदर, तो उनके साथ हम भी चले जाते फिर। तो मछली को न खाना वो लेकर शौबरी मुनि का पतन हो गया। मुझे याद है एक बार मैं मीरा रोड टेम्पल गया था, इस्कॉन मुंबई में एक मीरा रोड टेम्पल है, तो कमल लोचन पू वहाँ के प्रेसिडेंट है, तो वहाँ पर मैं एक डिवोटी को काफ़ी साल से जानता था, गृहस्थ डिवोटी, उनसे मैंने पूछा कि प्रभु जी आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे आए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाउ यू केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभु जी लुफ्तांसा एयरवेज में काम करते थे पहले, अभी रिटायर्ड हो गए, माता जी टीचर थी बड़े कॉलेज में, स्कूल में थी, तो उन्होंने मुझे एकदम रोमांचक कथा बताई, समय का यहाँ पर लिखा है कुछ तो गीता मैराथन ट्राई टू एंड माई क्लास ऑन टाइम। तो वो बताया कि वो उनका घर जो था ना विले पार्ले में था, जहाँ पर हमारा राधा रासबिहारी टेम्पल है। तो विले पार्ले में ये जो परिवार है ये कोंकण से, अभी महाराष्ट्र का थोड़ा बैकग्राउंड, महाराष्ट्र में अलग अलग प्रकार के अलग अलग विभाजन है महाराष्ट्र के। एक है कोंकण एरिया जहाँ पर पूरा कोस्टल लाइन है, वहाँ के लोग हमेशा मछली खाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, उनका रेगुलर डाइट हो, तो वो कोंकण एरिया से थे। लेकिन उनके जीवन में सब कुछ है था, अच्छा था, अच्छे अच्छा घर था स्टेशन के बगल में, अंधेरी ऐसे एरिया में पॉश, अच्छा जॉब था, एक लड़का भी छोटा था उनको, सब कुछ अच्छा था। उनका एक प्रॉब्लम था, उनका ऐसा प्रॉब्लम है कि वो दिन में 3 बार मछली खा लेते, ब्रेकफास्ट लंच डिनर शस्त्र संध्यम, 3 बार मछली खाते थे, 7 हफ्ते में 7 दिन मछली, 365 दिन मछली खाते थे, और सालों साल। कोंकणी लोग जो है उनके जात के, उनको बोलते थे ये हमारे रिकॉर्ड होल्डर लोग हैं, ये 3 बार खाते और हर साल हर दिन पूरा दिन खाते रहते। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उनको वैरायटी नहीं मिलती थी मछली की, तो रोज खा रहा है व्यक्ति 3 बार खा रहा है, थोड़ा वैरायटी चाहिए, 3-4 वैरायटी खा के क्या आनंद नहीं आएगा। तो विले पार्ले में वो फिश मार्केट इतना बड़ा नहीं था, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता फिश मार्केट इज़ नॉट बिग इनफ। तो बड़ा रिसर्च किया, ये तो 15 साल पे 20 साल पहले की बात है, जब उस समय ये सब नहीं था हमारे पास, गूगल वूगल नहीं था, तो रिसर्च किया, देखा कि आसपास सब फिश मार्केट सब छोटे छोटे हैं। फिर किसी ने कहा कि मीरा रोड में नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वहाँ पर बड़ा फिश मार्केट का एक प्रस्ताव है, शायद बन भी गया होगा। तो विले पार्ले से वो मीरा रोड गए। अभी देखिए बॉम्बे में विले पार्ले एक जगह है जहाँ पॉश एरिया है, और मीरा रोड सबर्ब्स में आ गया। मीरा रोड में देखा कि बड़ा फिश मार्केट है, इतनी वैरायटी है, ठान लिया विले पार्ले का घर बेचना है और मीरा रोड में शिफ्ट होना है। आमतौर लोग मीरा रोड से विले पार्ले शिफ्ट होते हैं, उनकी ऐसी इच्छा होती कि आगे आगे जाए कि नहीं, लेकिन पीछे आ गए, क्यों? मछली खाने के लिए। तो मीरा रोड में आ गए, प्रसन्न हो गए, सारी इच्छाएं पूर्ति हो गई, बड़ा फिश मार्केट था, शस्त्र संध्यम फिश मिल रहा था हमारा वैरायटी में। तो उनका एक एक हैबिट था, एक आदत थी कि शाम को टहलने को निकलना। तो उनका जो घर था, उन्होंने जो लिया घर, अच्छा घर, वो राधा गिरधारी टेम्पल और भक्तिवदन हॉस्पिटल के बगल में था घर उनका। तो शाम को वो जो रोड रास्ता था वो थोड़ा खाली होता था, तो वो चल के आते थे हस्बैंड वाइफ वहाँ पर। तो एक दिन कुछ 7:30 के आसपास शाम को निकले टहलने के लिए, तो मंदिर के बगल से गए, तो थोड़ा अलग लगा उनको कुछ, क्योंकि हमेशा मंदिर में बहुत जोर जोर से आवाज आता है कीर्तन का, या तो लाइट चालू होती, उसे लाइट बंद थी और सब दिए घूम रहे थे। तो उनको लगा क्या हुआ, कुछ मातम मातम कुछ हो गया, कुछ तकलीफ क्या, कुछ मर वर गया क्या, अंधेरा क्यों गया अचानक। वो कार्तिक का पहला दिवस था, फर्स्ट डे ऑफ कार्तिक, उस समय दामोदर संगम चल रहा था वहाँ पर। तो पता नहीं क्या हो गया, इतना अंधेरा क्यों है, हमेशा यहाँ से निकलते तो उजाला होता है, इतने सारे लोग घूमते रहते कि आज अंधेरा लग रहा है, सिर्फ दिए घूम रहे। तो मंदिर में प्रवेश कर लिया, मंदिर में गए तो देखा लाइन था, कुछ पता नहीं, लाइन में खड़े हो गए, लाइन बढ़ते बढ़ते आगे गई, सीधा उस काउंटर पर पहुंचे जहाँ दिया दे रहे थे सब लोग। तो उनके हाथ में दिया आ गया, उन्हें क्या करना है, अभी वो व्यक्ति इतना बिजी था दिया देने वाला, वो बोला प्रभु जी ओ ये आप आगे वाला जो करता है वही करते रहिए, जाइए। तो लाइन से आगे बढ़े, भगवान के सामने आए, भगवान के सामने हम दिया घुमा रहे, तो ये भी दिया घुमाने लगे, दिया घुमाते घुमाते फिर भीड़ थी बहुत, तो धक्का मारा तो लोग आगे चले गए थोड़े, तो लाइन से आगे आए, तो फिर वहाँ पर एक एक डिवोटी था, सबके दिए ले रहा था और वो डाल रहा था उस बिन में, तो उनके दिए लिए डाल दिए, लाइन आगे बढ़ी, ऐसे आगे बढ़े तो मंदिर के बाहर आ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मंदिर के अंदर गए घूम के मंदिर के बाहर भी आ गए। बाहर आ गए तो डिवोटी खड़ा के हंस रहा था, प्रसाद दे दिया, प्रसाद लिया और गेट के बाहर आ गए, बोला अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आनंद आ गया बहुत। अगले दिन उसी समय आए वो 7:30 के आसपास, फिर से देखा अंधेरा है, दिया है, फिर से अंदर चले गए। ऐसे वो हर दिन पूरे कार्तिक में उन्होंने दिया अर्पण किया भगवान को, और 30 दिन जब आए ना, उस 30 दिनों में वो सिर्फ 3 डिवोटी को अच्छे से जान पाए, वो दिया देने वाला वही कॉमन डिवोटी था, वो समझ गया ये लोग रोज आते हैं, उनको समझ गया ये व्यक्ति का चेहरा समझ गया। क्योंकि क्या होता है कि भक्त पहले बार लोग आता है ना, सब एक जैसे दिखते हैं उनको। जैसे हमारे राधा गोपीनाथ वो एक बार मंदिर में हमारे प्रेसिडेंट है वो खड़े थे, तो एक व्यक्ति आके यहाँ दास कौन है? तो सब दास हैं आपके, कौन सा दास चाहिए आपको? तो 30 के 30 दिन आए ये तीन लोग, दिया देने वाला, दिया लेने वाला और प्रसाद देने वाला। और खास के प्रसाद देने वाले को थोड़ा समय था ना, तो उससे बातचीत किया उनसे, आप पहली बार आए? हाँ। अच्छा, दूसरी बार आए? आते रहिए, अच्छा है, प्रसाद ज़्यादा देते थे उनको। फिर ऐसे करते करते उन्होंने पूछ लिया कि आप ये गले में क्या लटकाए हुए हो? तो बोले बीट बैग है। बोला ये क्या होता है? तो बोले यहाँ गिफ्ट शॉप है, जाइए वहाँ पर। तो वहाँ पर यहाँ भी गिफ्ट शॉप शायद है, गिफ्ट शॉप जाइए वहाँ पर और वहाँ से ले लीजिए। तो उन्होंने बीट बैग ले लिया, बीट बैग लेके आ गया, करना चाहिए जब कीजिए, तो जब सिखा दिया तो जब चालू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप रेगुलरली आइए। रेगुलरली का मतलब क्या? संडे को आइए, काफ़ी डिवोटीज आते संडे आने लगे, धीरे धीरे भक्ति चालू हो गई उनकी। फिर उनको पूछा गया कि प्रभु जी ये आपके गले में क्या है? बोले कंठी माला है। तो हम पहन सकते हैं क्या? बोले कुछ नहीं, हाँ पहन सकते हैं, आप जब कर तो रहे, बस 4 नियम पालन कर रहे हैं आपको। चार नियम क्या क्या हैं? मांसाहार नहीं करना, अच्छा, मछली नहीं खाना, मछली नहीं खाना। शौक लगे उनको, बाप रे। घर में गए और कहा कि घंटी माला पहनने की इच्छा हो रही, क्या करना चाहिए? तो पति पत्नी डिस्कस करने लगे, बोला ठीक है काम करते, चलो अब 3 बार ले रहे, 1 बार लेंगे, चलो अभी कम हो गया, एक ही बार फिश खाते थे। ऐसे धीरे धीरे एसोसिएशन करते करते उनकी मछली छूट गई। जो मीरा रोड में आए थे मछली खाने के लिए, वो भक्तों के संग में आके मछली छोड़ दिया उनका। मीरा रोड के भक्तों ने मछली छोड़ दिया उनका, छुड़वा दिया। अभी एक प्रॉब्लम हो गया, मछली के मार्केट में वो मछुआरे जो मछली बेचते थे वो सोचने लगे हमारे रेगुलर कस्टमर आता है कि नहीं। ना शायद वेकेशन में गए होंगे कहीं, तो या घर छोड़ दिए कहीं और चले गए। तो एक दिन मछली वाला, एक ऐसा मछली वाला जा रहा था मंदिर की तरफ से, तो मंदिर के गेट पे देखा ये फैमिली खड़ी है, तिलक, बीड बैग, हस्बैंड वाइफ और बच्चा। फिर वो समझ गया है ये हरे कृष्ण वालों ने जादू कर दिया है और इसको पूरा ब्रेन वॉश कर दिया है। इतना गुस्सा आ गया मछली वाले को, वो मंदिर में प्रवेश किया, उसने पूछा यहाँ का अध्यक्ष कौन है, उनसे मिलना है, कंप्लेंट कर रहा है। ऐसे कैसे आप अपना, हमारा आपका कस्टमर आ गया लेकिन हमारा कस्टमर छोड़ गया यहाँ पर। तो फिर कमलोचन को के केबिन में गए, तो प्रभु जी बोले हम कंप्लेंट करना चाहते हैं, हमारा एक मेन कस्टमर आपने जो हमेशा 3 में 3 बार मछली खाता था, उसका मछली छोड़वा दिया आपने, ये अच्छा नहीं है, गलत है। तो कमलोचन को बोले कि देखिए अभी यहाँ मंदिर में जो भी आता है पता नहीं क्या होता है उनके साथ में, तो मैं भी आपको भी वार्निंग देता हूँ, जितना आप मंदिर में खड़े रहेंगे आपको भी कुछ हो जाएगा। ये तो खाने, इन्हें खाने को छोड़ दिया, आप बेचने को छोड़ देंगे। तो मछली वाले वहाँ से भाग गया। तो मैं सोच रहा था कि ये मुझे ये मछली का कैसे, ये ऐसे कैसे याद आया कि यहाँ पर शौबरी मुनि का मछली के वजह से फॉल डाउन हो गया और ये डिवोटी का मछली के वजह से एलिवेशन हो गया कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो मछली इज नॉट द कॉज ऑफ एलिवेशन और फॉल डाउन, इट इज योर ओन चॉइस। शौबरी मुनि ने मछली के लिए वैष्णव निंदा या डिसर्विस किया, इसके वजह से शौबरी मुनि का जो है फॉल डाउन हुआ। तो हमारे सुदामापुर बोलते हैं शौबरी मुनि बिकेम सोबर, शौबरी बिकेम सोबर बिकॉज ऑफ विशेस। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा ऐसा है कि शौबरी मुनि जो है इतने एडवांस प्रैक्टिशनर थे, कितने वर्षों तक कैसे तपस्या कर रहे थे, यमुना में बैठकर तपस्या कर रहे थे, अंदर यमुना के अंदर पानी में। सोचिए कितना बड़ा एडवांस प्रैक्टिशनर होगा, ऐसे हालत में वो तपस्या कर रहे थे, एडवांस प्रैक्टिशनर, लेकिन फिर भी उनका पतन हो गया। तो एक बहुत सीनियर डिवोटी है हमारे इस्कॉन के, वो बता रहे थे कि शौबरी मुनि के कथा से हमें सीखना चाहिए कि कितना भी एडवांस प्रैक्टिशनर हो उसे हमेशा सावधान रहना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं हजारों साल तक मैंने तपस्या की है तो आज कुछ नहीं होगा. नहीं, एवरी डे इज अ यूनिक डे इन आवर लाइफ. हम सोचते हो कि मैंने 10 साल तक साधना की, जब क्या 16 माला, हाँ थोड़ा जब ढीला ढाला हो गया चलेगा. नहीं, हर दिन का जब इम्पोर्टेंट है, कि शोभनी होने के साथ में जो हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है. ऐसा होता है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी. तो कैजुअलिटी कभी होता है जब हम कैजुअल हो जाते हैं भक्ति में. तो हर एक दिवस हमारे भक्ति का इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. ऐसे कहा जाता है कि एक्सीडेंट कब होता है रोड ड्राइविंग में, कार ड्राइविंग में? ज़्यादातर एक्सीडेंट उनका होता है जो एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं. क्यों? उनको लगता है इतना एक्सपर्ट ड्राइवर हो भी क्या प्रॉब्लम है, और उसी तरह एक्सीडेंट होता है. तो यू आर ड्राइविंग में भी स्मूथ, बट द रोड इज नॉट स्मूथ, एंड ए पर्सन कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज ऑल्सो नॉट स्मूथ ड्राइवर. तो आप बहुत एडवांस होंगे, हम सब एडवांस होंगे, लेकिन जो ये पथ है भक्ति का, इसमें इतनी विघ्न आएगी, इतने प्रॉब्लम्स आएंगे. ये भौतिक दुनिया ऐसी है, पदम पदम यति पदम न तेषां. तो उसमें यहाँ पर शबरी मुनि की कथा से हम सीख सकते हैं कैसे हमेशा हमें केयरफुल रहना चाहिए, केयरलेस नहीं. तो जैसे उदाहरण के रूप में क्रिकेट का उदाहरण, तो क्रिकेट का कोई बहुत फेमस बल्लेबाज होगा इंडियन क्रिकेट का, तो अगर उसने 3 सेंचुरी मार ली 3 वनडे में, तो क्या वो गारंटी है 4th वनडे में भी वो सेंचुरी मारेगा? वो बोल सकता है 3 मार लिया 4th मार लूँगा मैं. नहीं, शायद 4th में वो 0 पे आउट हो सकता है. तो कृष्णा कॉन्शियसनेस भी ऐसा है, कितना सेंचुरी पीछे मारा उस पर आपका फ्यूचर डिपेंड नहीं होता है. आज का परफॉर्मेंस क्या है उस पर है. इसलिए हर मैच के पहले नेट प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि पहले हमने बहुत नेट प्रैक्टिस कर लिया आज आराम से थोड़ा, नहीं, हर एक मैच के पहले नेट प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट. इसलिए हर एक दिवस में वो सुबह का जो नेट प्रैक्टिस है वो है साधना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसे एक डिवोटी बता रहे थे कि किसने उनको पूछा एक डिवोटी को कि प्रभु जी आप कितना माला जप करते हैं, कितना राउंड करते हैं, कौन हम माला के बोले कोई राउंड कितना राउंड करते हैं होते हैं. तो उन्होंने कहा मैं 19 राउंड करता हूँ. 19 राउंड करते हैं आप, क्या बात है, बड़े एडवांस डिवोटी रोज 19 राउंड करते हैं. हाँ, 16 राउंड हरे कृष्ण का, 17, 18, 19 ब्रेकफास्ट लंच डिनर का राउंड मार के आता हूँ बस हमारे. तो ये डिवोटी बता रहे थे कि यही हमारा दिनचर्या चल रहा है, हमारी माला और प्रसाद. लेकिन हमें जानना चाहिए कि इसमें एक और एक सिद्धांत है कि हमें जो मिला है लोगों को देना चाहिए. जैसे हम देखते हैं कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन जिस पीरियड में हम बैठे हैं यहाँ पर, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमें मिला है उसे देना चाहिए दूसरों को. एक ऑफिस में एक कहावत आती है, ईयर एंड का कंसेप्ट होता है कि नहीं, अकाउंट्स में मार्च में आता है ईयर एंडिंग होता है ना, उस समय देखते हैं कि अकाउंटेंट लोग ज़्यादा काम करते, सारे साल का पूरा अकाउंट्स का वो जो भी वो नहीं कर पाए उस समय करना है, रिटर्न फाइल करना है. उसी तरह हमारा ये पूरा एक साल का जो है ना, हमारा एक कोटा है प्रीचिंग का, जन्म सार्थक करी कोरो परोपकार. सार्थक कर रहे लेकिन परोपकार में हमारा कोटा कम हो जाता है. इसलिए बराबर दिसंबर में ईयर एंडिंग में आ गया बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन. जो 11 महीने नहीं कर पाए, चलो आज पूरा मिल के वो अकाउंट क्लोजिंग करना है अभी, इसलिए पूरा 31 डेज हम क्या करते हैं, प्रचार करते हैं. सही है कि नहीं? तो यह बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन का हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़. एक किसी ने मुझे एक मैसेज किया था, उसमें लिखा था जो जो व्यक्ति खुद के लिए जीता है, जो व्यक्ति खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है. People will remember you when you give. जैसे गौर गोपाल को बता रहे थे, हमेशा हम एक ही भाषा समझते, क्या मुझे मिलेगा, क्या मुझे मिलेगा, लेकिन मैं क्या दूंगा ये कोई सोचता नहीं इसके बारे में. यहाँ पर एक बैंक है, देना बैंक यहाँ पर है क्या? तो बता रहे थे कि हमने सब ने लेना बैंक में अकाउंट खोला है, देना बैंक का अकाउंट खोला नहीं किसी ने. देना का, देने का शब्द जो हमारे हमारे शब्द कोश में ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी और हमारे वैष्णव आचार्य, हमारे गुरु, हमको बार बार एम्फोसिस करते हैं कि आप जीवन सार्थक कीजिए और परोपकार भी कीजिए। इसलिए हम देखते हैं, ऐसा हम बता रहे थे स्टार्टिंग में हमारे प्रवचन में, कि कितने सारे जो लोग हैं उनको कृष्ण या आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में या तो कुछ मालूम नहीं या तो गलत चीज़ मालूम है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, हमें कितना चाहिए, जितना हो सके उतना प्रभुपाद की किताबों को देना चाहिए। काफ़ी लोग बोलते हैं भक्त हमें, प्रभु जी इतना किताब बांट दिया, अभी कोई लेने वाला नहीं है। ऐसा मत सोचिए, कस्टमर बहुत है लेने वाले, बस हमें जाते रहना चाहिए। बॉम्बे में हमारे प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी हमने इतने लाखों किताब बांट दिए, दिल्ली में तो 3 times 4 times ज़्यादा होता है कि नहीं? एक कितना दूर यहाँ से अपार साथी मंदिर, 24 किलोमीटर में 8 लाख किताब हो जाती है, तो शायद पूरे इस्कॉन का एक साथ होगा रिकॉर्ड, नहीं फुल इस्कॉन मिला के भी 8 लाख नहीं होता होगा शायद, इतना किताब वितरण होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी किताब वितरण जाते हैं लोग होते हैं, लेने के लिए लोग हैं। तो ये सिद्धांत ठीक नहीं कि एक्चुअली लोग नहीं है, लोग ने लिया है, सबके पास है, जाते हैं हम ना करते हुए करते रहो, परोपकार करते। ये एंडिंग आ गया है हमारा अकाउंट, हम क्लोजिंग करेंगे पूरा परोपकार करके। तो यहाँ तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बताते हैं कि ये शौबरी मुनि जो है वो एक योगी थे और उनमें इतनी सिद्धियाँ थी कि वो एक बूढ़े व्यक्ति थे, उनका जो शरीर झड़ गया था लेकिन उस शरीर को उन्होंने एकदम दिव्य रूप से सुंदर बना दिया, और उस सुंदर सुंदर चीज़ों से उन्होंने अपने सुंदरता से सारी स्त्रियों को आकर्षित कर लिया। एक डिवोटी बता रहे थे अपने प्रवचन में, देखिए जैसे भागवत में कहा जाता है कि यद तीर्थ बुद्धि सलीली न करी चीज, यानी धाम में जाने के लिए सिर्फ धाम में जाते हैं हम, सिर्फ स्नान करने के लिए आना नहीं चाहिए पवित्र, वहाँ के साधुओं का संग करना चाहिए। तो बता रहे थे एक पॉइंट, देखिए शौबरी मुनि यमुना से बाहर आए एंजॉयमेंट करने के लिए स्त्रियों के साथ में, नल कुवेर और मणिग्रीव गंगा में अंदर गए एंजॉयमेंट करने के लिए। तो दोनों पवित्र नदी थी, एक बाहर निकला एक अंदर गए, दो अंदर गए। तो इट इज नॉट वेर यू एंटर और वेर यू कम आउट फ्रॉम, इट इज व्हाट इज द मेंटेलिटी इन विच यू एंटर और कम आउट फ्रॉम, दैट इज इम्पॉर्टेंट। शौबरी मुनि यमुना से बाहर आए इतने सालों की तपस्या पवित्र होने के बाद, फिर भी जो मन अपवित्र था, क्यों? क्योंकि उनके जीवन में भक्ति का, भक्ति उनके जीवन में थी, तपस्या थी, सिर्फ तपस्या। ही वॉज नॉट अ डिवोटी इन फुल सेंस, ही वॉज अ योगी। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि कैसे जो योगी होता है अपने सिद्धि से बहुत सारा चीज़ अर्पण अर्जित कर देता है। फिर एंड में प्रभुपाद बोलते हैं कि इतना होने के बाद भी शौबरी मुनि वॉज नॉट सेटिस्फाइड, इतने सालों तक एंजॉयमेंट करने के बाद फिर उसे पता चला कि मैं कहाँ फंस गया, और वहाँ से निकल के फिर से वो वानप्रस्थ आ गया। तो शौबरी मुनि के जीवन में भक्ति नहीं थी, वो उसका एक कमतरता थी। इसलिए तपस्या जो है ना, तपस्या से कुछ सिद्धि अर्चन हो सकता है लेकिन तपस्या से भगवान को हम नहीं प्रसन्न कर सकते। तपस्या भी होनी चाहिए, भक्ति में तपस्या होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे एक बार एक राधानाथ महाराज एक प्रवचन बता रहे थे कि आमतौर भारत में अगर किसी से पूछा जाए कि आपके गुरु कौन है, तो कभी कभी लोग बताते बड़े प्रेम से, बड़े गर्व से कि मेरे गुरु वो गुरु है जो हिमालय में 15 साल तपस्या करके फिर यहाँ पर दिल्ली या मुंबई में आए। तो लोग लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है बहुत। तो महाराज बता रहे कि अगर आपको पूछा जाए इस्कॉन के किसी डिसाइपल को कि आपके गुरु महाराज कौन है, तो आप बोलेंगे मेरे गुरु महाराज वो है जो 10 साल तक उन्होंने अपने जीवन में एयरपोर्ट में सड़कों पे किताब वितरण किया। तो उन्हें इम्प्रेस नहीं होंगे लोग, है कि नहीं? लोग के इम्प्रेस गुफा में या हिमालय से आए, लेकिन 10 साल तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया उसे कोई इम्प्रेस नहीं होगा। क्यों? क्यों लोग एक्सटर्नल्स बहुत देखते हैं, कि महाराज जी बता रहे थे अपने प्रवचन में, लेकिन कृष्णा क्या दिखते हैं? कृष्णा इज नॉट इंटरेस्टेड इन तपस्या, कृष्णा इज इंटरेस्टेड इन फॉर हुम यू आर डूइंग तपस्या, किसके लिए तपस्या कर रहे हो। जैसे प्रभुपाद जी कथा बताते कि एक योगी था, एक गुफा में रहता था वो, एक केव में, और साल में एक ही दिन बाहर आता था वो, वंस इन अ ईयर ही वुड कम आउट, और उस समय पूरा गांव आता था उसे वेलकम करने के लिए, उनका पूजा करने के लिए, मेला होता था वहाँ पर उस गुफा के बाहर। तो एक दिन ऐसे एक साल बीतने के बाद जब बाहर आया, देखा तो कोई भी बाहर नहीं है, तो आश्चर्य हो गया, अरे मैं आज बाहर आया हूँ, हर साल इतने सारे लोग यहाँ पर होते, कोई क्यों बाहर नहीं, आज गलत दिन में बाहर आया क्या, मैं कहीं सोचने लगा हूँ। फिर पता नहीं उत्कंठा इतनी हुई, एक पेड़ में चढ़ गया देखने के लिए कोई दूर से आ रहा है क्या, देखो बोले। तो प्रभुपाद जी बोले, देखो ही वॉज डूइंग तपस्या फॉर हिज नेम एंड फेम, नॉट फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। ही वॉज एक्सपेक्टिंग, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं बाहर आऊँ तो लोग मुझे जो है वेलकम करना चाहिए। तो तपस्या किस लिए होना चाहिए? भगवान की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। प्रभुपाद जी एक बार बीच पे जाके वो मॉर्निंग वॉक ले रहे थे, तो जो प्रभुपाद निकले उनके पीछे बहुत सारे डिसाइपल्स निकल गए उनके साथ में, तो एक डिवोटी ने छत पे देखा कि प्रभुपाद जा रहे, तो भाग भाग के नीचे आया, जूते के उधर देखा स्टैंड में जूता दिखने रहे उनका, कहाँ गया पता नहीं, शायद किसी पहन लिया होगा, तो बिना जूते के वो गया हो। तो उस समय जो सी बीच का जो सैंड था थोड़ा गर्म था, तो बीच वो डिवोटी बाड़ों पे चल रहा था बिना चप्पल के, भाग भाग के आ रहा था। प्रभुपाद ने देखा उस बात, प्रभुपाद ने कहा चप्पल कहाँ है, तो बोला प्रभुपाद को भूला नहीं, क्या बोल क्या बोलेंगे प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा कि कृष्णा कॉन्शियस में बहुत ऑस्टेरिटी ऑलरेडी है। कौन सी ऑस्टेरिटी? 16 माला रोज करना, बड़ा ऑस्टेरिटी है कि नहीं, रोज हमारा 16 माला हो जाए कितना अच्छा लगता है, लगता कि बड़ा कुछ वजन सिर से निकल गया ऐसे। 16 माला करना ऑस्टेरिटी, 4 नियम एकदम अच्छे से पालन करना, ये भी ऑस्टेरिटी। प्रभुपाद उसे बोले कि इतना ऑस्टेरिटी काफ़ी है आपके लिए, एक्स्ट्रा ऑस्टेरिटी मत कीजिए, उस एक्स्ट्रा ऑस्टेरिटी में फंस जाएंगे आप, यू फॉलो दिस मेन ऑस्टेरिटी दैट इज इनफ एंड सर्व कृष्णा। तो तपस्या किस लिए होना चाहिए? गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, ये सिद्धांत है, क्योंकि वो तपस्या वजह भक्ति बन जाती है। जैसे लक्ष्मण जी का नाम फेमस किया है, तपस्या किया उन्होंने 14 साल तक, एक दिन भी सोए नहीं वो, तो वन में थे तभी, लेकिन वो तपस्या किस लिए कर रहे थे? अपने लिए नहीं, राम और सीताराम के लिए कर रहे थे। तो नासिक में जब आए, तो नासिक में लक्ष्मण जी ने प्रभु रामचंद्र और सीता देवी के लिए पर्ण कुटीर बनाई, और पर्ण कुटीर बना के बाद वो बाहर पहरा कर रहे थे। कुछ 11 साल बीत गए थे वनवास के, तो ऐसा कहा जाता है कि एक दिन रात को जब वो पहरा दे रहे थे, एक सुंदर स्त्री आई, गॉडेस कोई तो, और आके बोले लक्ष्मण जी से, मुझे आपकी कोई सेवा करनी है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, धन्यवाद माता जी, आपका नाम शुभ नाम क्या है? अरे मैं निद्रा देवी हूँ। मैं कौन हूँ? निद्रा देवी हूँ। 11 साल तक तुम सोए नहीं हो, मुझे कुछ सेवा दो, लेट मी सर्व यू, आज आप सो जाइए थोड़ा 5-10 मिनट। लक्ष्मण ने कहा, नहीं आई एम सॉरी, आप शायद गलत जगह पे आ गई हो। फिर उसने याचना की निद्रा देवी ने, कृपया 1 मिनट या 5 मिनट का अवसर दीजिए, सोचिए। और लक्ष्मण ने कहा कि सॉरी रॉन्ग नंबर। फिर इतना वो याचना किया, तो फिर लक्ष्मण ने कहा, एक काम कीजिए आप जो अयोध्या में जाइए, अयोध्या में उर्मिला देवी है, मेरी पत्नी है, जैसे मैं तपस्या कर रहा हूँ मैं सोया नहीं हूँ बिल्कुल, शी इज़ फॉलोइंग माई फुट स्टेप्स, शी हैज़ ऑल्सो नॉट स्लेप्ट, अयोध्या में वो भी जाग रही है 11 साल से, यू गो एंड ऑफर दिस, अपना ये ऑफर जो है ना जो उनको दीजिए, शील बी हैप्पी। तो निद्रा देवी अयोध्या में आई उर्मिला देवी के पास, और उर्मिला से कहा कि आपके हस्बैंड ने भेजा आपका भेजा है मुझे आपकी सेवा करने के लिए। तो उर्मिला देवी ने कहा, क्या सेवा है? थोड़ा आपको मैं निद्रा देवी हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो उर्मिला देवी भी नहीं कहा सॉरी। तो निद्रा देवी इतनी प्रसन्न हो गई, क्या हस्बैंड वाइफ कॉम्बिनेशन है, कहा कि उर्मिला से कहा कि क्या मांगना है बाबू, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू प्लीज। तो उर्मिला ने वो क्या मांगा, उर्मिला देवी ने कहा कि आज पहली बार 11 साल में मेरे पति को मेरी याद आई, मुझे वचन दीजिए कि नेक्स्ट 3 साल तक बिल्कुल याद नहीं आना चाहिए, ताकि उनका जो सेवा भंग नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने प्रार्थना की। तो लक्ष्मण जी का उदाहरण है, उर्मिला देवी का उदाहरण, तपस्या किया, लेकिन किस लिए किया? भगवान के संतुष्टि के लिए सब तपस्या किया, अपने लिए तपस्या नहीं किया। तो कृष्ण भावना में भी ऐसे ही है, जहाँ पर तपस्या भी हम करते हैं वो किस लिए करते हैं? भक्ति के अनुकूल तपस्या होती है, भक्ति के प्रतिकूल तपस्या होती है। तो कहने के लिए काफ़ी कुछ है, हम ऑलरेडी लेट हो गए, यहाँ पर अपने कथा को विराम देता हूँ। धन्यवाद। रुक्मिणी कृष्ण भगवान सब एडिट एड, और कोई सीनियर डिवोटी यहाँ कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण।
आप
प्रार्थना कीजिए, मैं कैजुअलिटी नहीं बन जाऊँ। धन्यवाद हरे बोल आपका, आप सबका, आप इतने ध्यानपूर्वक कथा सुन रहे थे, और हम यहाँ पर हैं आज पूरा दिन, तो अगर आपको समय है तो आपका संग दीजिए, हम कुछ बताइए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, आप लोग वेटरन लीडर्स हैं पूरे इस्कॉन के, और शडू तो बता दें मुझे कि 2 दिन से हम हम्बल्ड हो गए हैं ऑलरेडी, चौपाटी के लोग हम्बल्ड हो गए, सब चौपाटी चौपाटी बोल के बहुत हमको ऊपर ऊपर चढ़ा दिया, हमारा टायर पंक्चर हो गया यहाँ पर। तो हमें और सीखना है आप लोग से कि कैसे आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कितना प्रभुपाद के लिए, प्रभुपाद का सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन है, प्रभुपाद सर किसकी और चीज़ के लिए बोला, इफ़ यू वांट टू प्लीज मी डू कॉलेज प्रीचिंग, ऐसा कुछ लिखा गया, इफ़ यू वांट टू प्लीज मी डू फूड डिस्ट्रीब्यूशन, इफ़ यू वांट टू प्लीज मी कॉन्ग्रीगेशन, इफ़ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, प्रभुपाद का वो लाइफ एंड सोल था। तो उसके लिए आप लोग इतना इस ठंडी मौसम में, ठंडे के मौसम में इतना किताब ठंड, तो आप लोग सीखूंगा तो एटलीस्ट राधा गोपीनाथ टेम्पल में कुछ हम अमल कर पाएंगे, और कुछ प्रभुपाद जी और परम पूज्य राधानाथ महाराज को संतुष्ट कर पाएंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।